आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। व्यापक रूप से ये उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक दरें घटाएगा। ऐसे में मॉर्गेज धारकों को 5 साल में पहली बार लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती मिल सकती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बोर्ड की बैठक कल यानी सोमवार 7 जुलाई से शुरू हो रही है। ये इस हफ्ते के आर्थिक एजेंडे में सबसे ऊपर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ फिर से बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं। वर्तमान आर्थिक अनिश्चितता और साल की धीमी शुरुआत को देखते हुए बाजारों ने लगभग तय मान लिया है कि मंगलवार 8 जुलाई को रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा। हालांकि अर्थशास्त्री बाजार की तुलना में थोड़े संकोच में है, लेकिन तुलना वेबसाइट फाइंडर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में हर 10 में से लगभग 9 विशेषज्ञों ने माना कि दरों में कटौती की पूरी संभावना है। दूसरी ओर विक्टोरिया के विपक्ष नेता ब्रैड बैटन ने मेलबर्न के एक सिनेगॉग पर हुए हमले में लेबर सरकारों की कथित कमजोर नेतृत्व शैली को जिम्मेदार ठहराया है। बीती रात मेलबर्न के सीबीडी इलाके में काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने सिडनी के एक 34 वर्षीय व्यक्ति को पूर्वी मेलबर्न स्थित सिनेगॉग पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि इस व्यक्ति ने इमारत के मुख्य दरवाजों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। उस समय इमारत के अंदर उपासक मौजूद थे। सौभाग्यवश इस हमले में किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। ये घटना उस रात हुई जब मेलबर्न के एक इजरायली रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शन जारी था। ब्रेड बैटन का कहना है कि जेसिंटा एलन की विक्टोरियन सरकार यहूदी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। वहीं सबसे वंचित लोगों की मदद करने वाले एक समर्पित डॉक्टर और एक AFL लेजेंड उन प्रमुख अबोरिजिनल व्यक्तित्वों में शामिल हैं जिन्हें इस साल के नायडॉक राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार व्यक्तिगत उत्कृष्टता को पहचानते हैं और प्रथम राष्ट्र समुदायों की संस्कृति, नेतृत्व और मजबूती का उत्सव मनाते हैं। 2025 का संस्करण नायडॉक सप्ताह की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। पर्थ में आयोजित समारोह ने 6 से 12 जुलाई तक के पूरे देश में मनाए जा रहे नायडॉक सप्ताह की 50वीं वर्षगांठ का औपचारिक शुभारंभ किया। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के जनरल प्रैक्टिशनर और डेंटिस्ट डैनियल हंट को वर्ष का नायडॉक पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें यह सम्मान स्वास्थ्य क्षेत्र में उस योगदान के लिए मिला जिसमें उन्होंने उन लोगों की मदद की जो असमान रूप से उच्च दरों पर पुरानी बीमारियों और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। दूसरी ओर एक नए शोध में पाया गया है कि अबोरिजिनल छात्रों को समग्र रूप से सहयोग देने से उनकी स्कूल की उपस्थिति बढ़ती है और आत्मविश्वास में सुधार होता है। ऑरोरा एजुकेशन फाउंडेशन के रीडिफाइनिंग इंडिजिनस सक्सेस इन एजुकेशन कार्यक्रम के अनुसार सांस्कृतिक गतिविधियों और बुजुर्गों को शैक्षणिक सहायता से जोड़ने से बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। 5 साल की इस पहल में 3 स्तरों पर सहायता दी जाती है। सबसे बुनियादी स्तर पर ट्यूटरिंग और लैपटॉप जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि उच्च स्तरों पर छात्रों को प्रति सेमेस्टर $1,000 तक की आर्थिक सहायता भी मिलती है। जिन छात्रों को सबसे अधिक समर्थन मिला उन्होंने स्कूल से जुड़ाव की भावना को अन्य छात्रों की तुलना में अधिक मजबूत बताया। इन छात्रों में भविष्य को लेकर आत्मविश्वास भी अधिक देखा गया, 76% बनाम 59%। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हजारों तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबी भारत के हिमालय शहर धर्मशाला में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जहां वे दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। दलाई लामा ने हाल ही में कहा कि वे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने की योजना बना रहे हैं। लाल वस्त्र पहने सैकड़ों भिक्षुक और भिक्षुणियां लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्य दलाई लामा मंदिर की ओर बढ़ते देखे गए, जहां आध्यात्मिक गुरु का भाषण निर्धारित था। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 1959 में तिब्बत से चीन शासन से भागने के बाद भारत में निर्वासन कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेंगे। इस घोषणा ने उन अटकलों को समाप्त कर दिया है कि वे संभवतः इस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति हो सकते हैं। और अब अंत में भारत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई को होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इसके बाद वे ब्राजील की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। ये ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी का चौथा दौरा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले ब्यूनस आयरस में पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं ने खनिज, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से लिथियम जैसे खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को अहम माना जा रहा है। अगस्त 2022 में इस पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक जनवरी में हुई थी। 21 और 22 में भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था। इसी के साथ 6 जुलाई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।